आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
ये है अमर उजाला आवाज की खास पेशकश मोहब्बतें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनामिका और आइए आज सुनते हैं कहानी अलख निरंजन, जिसे लिखा है सहबा जाफरी ने। माजी साहब, गौरा जीजी की कार पहुंचने ही वाली है, आवेश भैया का फोन आ गया है। घर के सबसे पुराने नौकर ने टेरेस पर आकर अंगूर की बेलों के सायबान के नीचे रजवाड़ी झूले पर पसरी मातंगी देवी को खबर दी तो अपनी कलफ लगी सफेद साड़ी की भांजों को सलीका देती मातंगी देवी सधे कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। अपनी कोल्हापुरी चप्पलों से धीमी धीमी पगथलियां रखती वो सीढ़ियां उतरती, ऐसी लग रही थी मानो राजा शांतनु से अपने पुत्र देवव्रत की कुशल क्षेम लेने साक्षात गंगा आई हूँ। वे जब तक अपने भव्य ड्राइंग रूम के अंतिम सोपान को अपनी चरण रज से कृतार्थ करती, आवेश और गौरा की कार बाहर पोटिको में आकर लग चुकी थी। कमली आरती की थाली थामे मुख्य द्वार के बंधनवार के नीचे अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी और स्वागत द्वाराचार की पूरी व्यवस्था का प्रबंध हो चुका था। आखिर होने वाले जमाई बाबू के साथ आज उनकी लाडली शहर से घर लौटी है। कुमकुम अक्षत रोली संग द्वाराचार पूर्ण हुआ। आवेश को अपना कमरा दिखा, वो गौरा को आराम की ताकीद कर विवाह की व्यवस्था का निरीक्षण करने लगी। कुछ कुछ सोचती सी उनकी स्नायु तंत्रिका चकित और भयभीत भी थी। कहीं जमाई बाबू से विवाह बंधन में बंध गौरा वही गलती तो नहीं कर रही थी जो उन्होंने बरसों पहले की थी। समय जैसे उड़ चला था, मानो अभी अभी की बात हो। मातंगी देवी नरसिंहगढ़ की अपनी बड़ी हवेली से ट्रेन पकड़ फतेहगढ़ को निकली हो, हाथ में एक बक्सा और सवा माह की नन्ही गौरा। उन्होंने सिर झटक कर अपने आप को अतीत से निकाल वर्तमान में लापटका, पर एक ठंडी सी सांस के साथ जैसे हर्षवर्धन की स्मृतियां उनके मस्तिष्क में सुइयां चुभोने लगी। अभी होते तो देखते गौरा कितनी बड़ी और सुंदर हो गई है। 20 साल वो अधलेटी हो सुस्ताने लगी और सुस्ताते सुस्ताते मानो वो खुद ट्रिनिटी कॉलेज के कैंपस में पढ़ने वाली 16 साल की बालिका हो गई थी। वही बालिका जिसके जमींदार पिता की 3-3 पत्नियां होने के बावजूद भी वो इकलौती संतान रही, और जन्म लेते ही जिसे दायित्वों का बोध जैसे घुट्टी में पिला दिया गया हो। वही बालिका जिसने पुत्र और पुत्री दोनों की भूमिका का निर्वाहन करते करते स्वतः ही लिंग भेद से मुक्ति पा यत पिंडे तत ब्रह्मांडे के सिद्धांत को कंठस्थ कर लिया। शायद इसी से नारी सुलभ झिझक उसमें खुद ही समाप्त हो गई और यूं जन्म भर उसकी कोई स्त्री मित्र भी नहीं रही। रही सही कसर विलायत के शिक्षण संस्कारों ने पूरी कर दी, जहां वे टॉमकिंस टेबल के सारे मैदानों में सर्वश्रेष्ठ धाविका होने का गौरव हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। बड़े से बड़े धावक इस कृष कलिका को परास्त न कर पाए, किंतु हर्षवर्धन की एक बंकिम मुस्कुराहट के आगे वो अपना सब कुछ हार बैठी। जिस सत्र में मातंगी ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, भारत की पहचान उस सत्र में हर्षवर्धन का नाम थी। वार्षिक उत्सव के पुरस्कार वितरण के दौरान एक नहीं कई कई बार हर्षवर्धन जमुना प्रसाद पांडे का नाम उसने बड़े चाव से सुना था। हॉकी में प्रथम, तैराकी में निकलस ओल्सन के बाद, तो घुड़सवारी में क्रीक एशले और स्टीफन वेबर के बीच में। फिर एक दिन जब वो मैदान में दौड़ने की प्रैक्टिस के दौरान गिर गई, तब पहली बार हर्ष उसे गोदी में उठा उसके कक्ष तक छोड़ गए थे। हर्ष के स्पर्श के पहले उसने पुरुषों को कभी युवावस्था के स्त्री उद्दीपन से नहीं जोड़ा, पर हर्ष के एक स्पर्श ने जाने कौन सा जादू कर दिया था कि मन धड़क धड़क कर उसे इशारे देने लगा, ये तुम्हारे लिए बना है। 20 साल की स्मृतियां आज दंश देने पर आई थीं, जाने क्या क्या याद दिलाकर छोड़ेंगी। वो उठी, अतीत के पलों को अपराजिता के नीले गुच्छों में बांध समेट कर रखने की कोशिश करने लगी। हर्ष पहले और आखिरी पुरुष थे जिसने मातंगी के मन में बैठे लक्ष्योन्मुखी अर्जुन को मत से लोचन से भटका सा दिया था। अब इसमें कसूर मातंगी का था भी नहीं। हर्ष इतने पूर्ण थे कि उनके साथ बीती एक घड़ी किसी अन्य पुरुष के साथ बिताई एक सदी पर भारी थी। फिर मातंगी भला क्या करती। स्त्री सुलभ प्रणय निवेदनों से अनभिज्ञ उसने हठात पूछा था, आप मुझसे विवाह करेंगे? जिसे बड़ी ही सौम्यता से उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अभागी बेला में समय भी जैसे एक सपोले की भांति हो जाता है, कब अंक में पलता पलता अपनी ही छाती में दंश दे दे कुछ नहीं कह सकते। फिर सब कुछ सर्प से जैसे काल सर्प ही हो जाता है। शायद कुंडली के इसी काल सर्प ने उसे हर्षवर्धन की तरफ आकर्षित किया था, और फिर हर्ष के सन्यास लेने की जिद के बावजूद भी उसने स्वेच्छा से बिन ब्याही माँ बन नन्हे हर्षवर्धन को जन्म देने का निर्णय लिया था। वो एक क्षण कि जब वो हर्ष की बाहों में समाई थी, क्षिति जल पावक गगन समीर मानो पंच तत्वों में समाहित लक्ष अलक्ष देवगण इस पाणी ग्रहण के साक्षी थे, और फिर धरा पर शायद किसी वसंत ने ऐसा संगम नहीं देखा था। पर नियति को तो कुछ और मंजूर था। मातंगी के गर्भ की संतान बेटा न होकर एक बेटी थी। उसने वचनानुसार हर्ष की कोई खोज नहीं की। उसके जीवन में फिर कोई बसंत नहीं आया। वो 3 माह का गर्भ ले माँ पिता की दहलीज पर नहीं लौटी, बल्कि एक निर्जन उदासीन महिला आश्रम में प्रसव करवा नरसिंहगढ़ से माँ पिता का आशीर्वाद ले फतेहगढ़ आ गई थी। यहीं पर उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, कई सेवा आश्रम डाले, और फिर इसी अंचल में समय अपनी पुस्तक रचने लगा। उसके जिम्मेदारी भरे स्वभाव ने शीघ्र ही उसे दीदी माँ और दीदी साहब की उपमा दिलवा दी। अनाथ बच्चों के बीच पली बढ़ी गौरा ने कभी पिता और माँ के संयोग श्रृंगार से उपजे कुटीर की कल्पना तक न की थी। इसी से जीवन से उसे कभी कोई निराशा नहीं हुई थी। पर मातंगी देवी ने संसार को भोगा नहीं सहा था, इसी से बेटी के लिए चिंतित होना स्वाभाविक था। एक तो कुंडली मिलान का कोई स्थान नहीं, दूजे विवाह में कन्यादान को लेकर अब तक कोई व्यवस्था नहीं थी। उनका मन कच्चा कच्चा हो आया था। आश्चर्य था गौरा और आवेश अब तक शांत ही थे। शाम का समय फेरों के ठीक पहले मातंगी देवी तैयार होती गौरा के कमरे में प्रविष्ट हुई। पता नहीं आवेश कैसा साबित होगा, तुमने ठीक ठाक उसे समझा है ना, कन्यादान का क्या होगा? वे व्यथित थी। शांत हो जाइए माँ, आवेश मेरी नहीं मेरे गुरुदेव की पसंद है। मेरे ही कॉलेज में ज्योतिष के प्रोफेसर, ब्रह्मचारी, पहुंचे हुए सन्यासी और अपनी विद्या में इतने निपुण कि 7 ग्रहों की संपूर्ण जानकारी अपनी गणना से दे सकते हैं। मातंगी देवी निश्चिंत तो हो नहीं पाई, पर थोड़ी सी राहत महसूस करने लगी। जाने क्यों आज मन भटक भटक कर हर्षवर्धन के पास भाग रहा था, वही जिसके साथ आंख मूंद एक रात की ली हुई निद्रा पूरे जीवन का जागरण बन गई थी। कन्या को बुलाएं। पंडित जी का कथन हुआ कि अलख निरंजन की भव्य आदि और हिमालयीन ध्वनि नाद करते एक पुरुष के साथ गौरा प्रविष्ट हुई। माँ, ये मेरे गुरुदेव ज्योतिष शिरोमणि ब्रह्मचारी संत डॉक्टर हर्षवर्धन पांडे। मातंगी देवी इस स्वर के हर उतार चढ़ाव से जैसे सुपरिचित थी। वही सम्मोहिनी, वही कामदेव से चितवन और वही शिव सा शिवत्व, कहीं कुछ भी नहीं बदला था। उन्हें आश्चर्य से चक्कर आने को हुआ, पर किसी तरह खुद को संभालती वे उनके चरण छूने लगी। रस्में निपट गईं, भोजन आदि से निवृत्त हो वो लोग बातें करने लगे। किस आधार पर आपने आवेश को गौरा के लिए चुना? ना चाहते हुए भी उनके स्वर में वर्षों की कटुता घुल सी गई। माँ, आचार्य जी का कथन है, गौरा वो पुरुष जिसके साथ मन सांसारिक सुख और प्रेम भरी निद्रा चाहे, उस पुरुष का चयन करके तुम वो गलती मत करना जो वर्षों पूर्व तुम्हारी माने की थी, बल्कि उस पुरुष का वरण करना जिसके साथ मन जागृत होना चाहे। इस आधार पर आवेश तुम्हारे लिए सुंदर और भव्य विकल्प है। वाह रे ईश्वर तेरी लीला। बिटिया को सुन मातंगी देवी हतप्रभ रह गईं। उन्हें अपनी वर्षों से सेंध कर रखे गए प्रश्न का उत्तर अनायास मिल गया और हर्ष ऐसे निश्चिंत बैठे थे मानो इतने दिनों बिना नेत्रों की भी वो उसे सदैव देखते रहे हों। उसे आज ईश्वर के अस्तित्व का जैसे साक्षात्कार हो गया हो। दोनों के मुख से अचानक एक साथ निकला, अलख निरंजन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।